नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जस्ट फॉर फन लिनस टॉरवाल्ड्स की डेविड डायमंड के साथ लिखी गई आत्मकथात्मक पुस्तक है, जो लिनक्स कर्नेल के जन्म और उसके पीछे काम करने वाले व्यक्ति की सोच को साथ साथ प्रस्तुत करती है। यह पारंपरिक तकनीकी इतिहास नहीं है, न ही किसी महानायक का बिना आलोचना वाला चित्रण। पुस्तक हेलसिंकी में टॉरवाल्ड्स के बचपन, कंप्यूटरों के प्रति उनकी जल्दी विकसित हुई रुचि, विश्वविद्यालय के वर्षों और एक निजी प्रयोग से शुरू हुई लिनक्स परियोजना की यात्रा को बयान करती है। इसका केंद्रीय विचार यह है कि उपयोगी और दूरगामी काम हमेशा किसी भव्य व्यावसायिक योजना से नहीं निकलता, बल्कि जिज्ञासा, समस्या सुलझाने की इच्छा और काम के आनंद से भी निकल सकता है। टॉरवाल्ड्स अपनी व्यावहारिक प्रवृत्ति, तकनीकी बहसों, सार्वजनिक पहचान से असहजता और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के प्रति गैर धार्मिक दृष्टिकोण पर खुलकर बोलते हैं। डेविड डायमंड के खंड उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करते हैं जो वैश्विक तकनीकी आंदोलन के केंद्र में होते हुए भी स्वयं को मुख्यतः एक प्रोग्रामर मानता है। इसीलिए पुस्तक लिनक्स की कहानी के साथ सृजन, सहयोग और तकनीकी नेतृत्व का भी अध्ययन बन जाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, खेल और जिज्ञासा से शुरू हुई लिनक्स की असाधारण परियोजना पुस्तक का शीर्षक टॉरवाल्ड्स की उस मूल प्रेरणा को पकड़ता है जिसमें प्रोग्रामिंग पहले आनंद, प्रयोग और बौद्धिक चुनौती थी, कोई घोषित विश्व परिवर्तनकारी मिशन नहीं। बचपन से कंप्यूटरों के साथ उनका लगाव केवल उपयोगकर्ता बनने तक सीमित नहीं था। वे यह समझना चाहते थे कि मशीन भीतर से कैसे काम करती है और उसे अपने हिसाब से क्या कराया जा सकता है। विश्वविद्यालय के समय यह प्रवृत्ति अधिक गंभीर हुई जब यूनिक्स जैसे तंत्रों और मिनिक्स ने उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के ढांचे को समझने का आधार दिया। लिनक्स शुरू में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर बेहतर नियंत्रण पाने की कोशिश थी, न कि स्थापित कंपनियों के विरुद्ध कोई संगठित अभियान। यही संदर्भ पुस्तक की सबसे उपयोगी सीख देता है। आरंभिक लक्ष्य सीमित था, लेकिन उसे तकनीकी रूप से ठोस बनाने की लगातार कोशिश ने परियोजना को दूसरों के लिए उपयोगी बनाया। टॉरवाल्ड्स किसी विचार को उसके घोषित महत्व से नहीं, उसके काम करने से परखते दिखते हैं। इसलिए पुस्तक जिज्ञासा को केवल निजी शौक नहीं मानती। जब जिज्ञासा के साथ पर्याप्त कौशल, धैर्य और साझा करने की तैयारी जुड़ती है, तब छोटा प्रयोग सार्वजनिक अवसंरचना का रूप ले सकता है। फिर भी पुस्तक यह दावा नहीं करती कि हर शौक वैश्विक आंदोलन बनेगा। लिनक्स की सफलता में सही समय, इंटरनेट की उपलब्धता और योगदान देने वाले समुदाय की निर्णायक भूमिका भी थी। दूसरा, वितरित योगदान मॉडल और लिनक्स समुदाय की कार्य प्रणाली। लिनक्स की कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि टॉरवाल्ड्स ने विकसित होते कोड को जल्दी सार्वजनिक किया और बाहरी योगदान स्वीकार करने की प्रक्रिया बनाई। यह निर्णय केवल उदारता का संकेत नहीं था, बल्कि जटिल सॉफ्टवेयर बनाने की व्यावहारिक रणनीति था। अलग अलग स्थानों के प्रोग्रामर त्रुटियां ढूंढ सकते थे, नए हार्डवेयर के लिए समर्थन जोड़ सकते थे और अपने उपयोग के आधार पर सुधार सुझा सकते थे। इस व्यवस्था में खुलापन अपने आप गुणवत्ता की गारंटी नहीं देता। किसी को परिवर्तनों की समीक्षा करनी होती है, उन्हें समन्वित करना होता है और कर्नेल की तकनीकी दिशा बचाए रखनी होती है। पुस्तक टॉरवाल्ड्स को उस केंद्र के रूप में दिखाती है जो योगदानों के लिए द्वार खोलता है, पर हर सुझाव को स्वीकार करने का दायित्व नहीं लेता। यह मॉडल बाद में एरिक रेमंड के कैथेड्रल और बाजार रूपक से जोड़ा गया, हालांकि पुस्तक का बल किसी सिद्धांत से अधिक वास्तविक विकास अनुभव पर है। इसकी व्यावहारिक सीख यह है कि सहयोग का अर्थ नियंत्रण छोड़ देना नहीं, बल्कि स्पष्ट मानकों के साथ निर्णय प्रक्रिया को व्यापक बनाना है। इंटरनेट ने प्रतिभा को भौगोलिक सीमाओं से बाहर जोड़ा, पर साझा कोड, निरंतर संवाद और रखरखाव ने उस प्रतिभा को उपयोगी परिणाम में बदला। लिनक्स समुदाय इसलिए केवल स्वयं सेवकों की भीड़ नहीं, बल्कि तकनीकी जांच और जिम्मेदारी की संरचना था। तीसरा, मुक्त स्रोत पर टॉरवाल्ड्स का व्यावहारिक दृष्टिकोण। पुस्तक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर को नैतिक सिद्धांतों की कठोर परीक्षा के बजाय उपयोगिता, सहयोग और बेहतर तकनीक के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करती है। टॉरवाल्ड्स का दृष्टिकोण रिचर्ड स्टॉलमैन से जुड़े मुक्त सॉफ्टवेयर आंदोलन के अधिक वैचारिक रुख से अलग दिखाई देता है। वे साझा कोड और उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता के महत्व को नकारते नहीं है, लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि खुला विकास बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने में कैसे सहायक है। यह अंतर उस समय खास महत्व रखता था जब कंपनियां खुले लाइसेंसों को संदेह से देखती थीं। टॉरवाल्ड्स की भाषा में मुक्त स्रोत को व्यावसायिक दुनिया से अलग रखने की जरूरत नहीं थी। कंपनियां लिनक्स का उपयोग कर सकती थीं, उसमें निवेश कर सकती थीं और अपने हितों के अनुरूप सेवाएं बना सकती थीं, बशर्ते कर्नेल के साझा विकास की शर्तों का सम्मान हो। पुस्तक इस व्यावहारिकता को लिनक्स के व्यापक अपनाव का एक कारण मानने का आधार देती है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यावहारिकता विचारहीन समझौता नहीं है। कोर्ट तक पहुंच, संशोधन और योगदान की क्षमता सॉफ्टवेयर को एक संस्था या विक्रेता पर निर्भर होने से बचाती है। पाठक समझता है कि खुले विकास का मूल्य केवल लागत कम होना नहीं, बल्कि जांच योग्यता, अनुकूलन और सामूहिक सुधार की संभावना है। इस तरह पुस्तक वैचारिक मतभेद को सरल अच्छे और बुरे के संघर्ष की तरह नहीं, बल्कि तकनीकी संस्कृति के दो अलग रास्तों की तरह देखती है। चौथा, तकनीकी निर्णयों में कोड को बहस से ऊपर रखने की प्रवृत्ति, टोरवाल्ड्स का प्रसिद्ध रुख, बातों से अधिक कोड दिखाने की मांग। पुस्तक में उनके काम करने के तरीके का संक्षिप्त संकेत बनकर उभरता है। इसका आशय यह नहीं कि सिद्धांत, डिजाइन या आलोचना बेकार है, बल्कि उनका आग्रह है कि सॉफ्टवेयर संबंधी दावों को चलने वाले समाधान, प्रदर्शन और वास्तविक उपयोग की कसौटी पर परखा जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन में मोनोलिथिक कर्नेल और माइक्रो कर्नेल के विवाद का संदर्भ इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। टोरवाल्ड्स ने लिनक्स के लिए मोनोलिथिक ढांचा चुना और उसे अमूर्त शुद्धता के बजाय उस समय के व्यावहारिक लाभों के आधार पर उचित ठहराया। पुस्तक यह भी दिखाती है कि ऐसी बहसें व्यक्तिगत और तीखी हो सकती हैं। टोरवाल्ड्स की सीधी, कभी कभी कठोर भाषा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी और यह शैली सभी को स्वीकार्य नहीं लगती। इसलिए इस विषय का संतुलित निष्कर्ष यह है कि परिणाम केंद्रितता उपयोगी है, पर संवाद की गुणवत्ता और सहयोगियों के प्रति सम्मान भी दीर्घकालिक समुदाय के लिए मायने रखते हैं। तकनीकी नेतृत्व में निर्णायकता आवश्यक हो सकती है, किंतु वह अपने आप में पर्याप्त नहीं। फिर भी पुस्तक का स्थायी संदेश स्पष्ट है। किसी डिजाइन की श्रेष्ठता केवल प्रतिष्ठा, पद या सुंदर सिद्धांत से तय नहीं होनी चाहिए। उसे वास्तविक सीमाओं, उपयोगकर्ता की जरूरतों और कार्यरत कार्यान्वयन के सामने जवाब देना चाहिए। अंत में, अनिच्छुक सार्वजनिक व्यक्तित्व और तकनीकी नेतृत्व की सीमाएं जस्ट फॉर फन टोरवाल्ड्स को मंच पर सहज सर्वज्ञ क्रांतिकारी के रूप में नहीं गढ़ती। उनके वर्णन में एक ऐसा प्रोग्रामर सामने आता है जिसे लंबे समय तक अपने कमरे में गहराई से काम करना, समस्याओं पर केंद्रित रहना और सार्वजनिक बोलने से बचना अधिक स्वाभाविक लगता था। लिनक्स के फैलने के साथ यह निजी झुकाव और सार्वजनिक भूमिका के बीच तनाव पैदा करता है। उन्हें समुदाय की अपेक्षाओं, मीडिया की रुचि और कंपनियों के ध्यान का सामना करना पड़ा, जबकि उनकी मूल पहचान कोड लिखने और तकनीकी निर्णय लेने से जुड़ी रही। यह पहलू तकनीकी नेतृत्व की एक उपयोगी, कम रोमांटिक तस्वीर देता है। नेतृत्व हमेशा आकर्षक वक्तृत्व या सुव्यवस्थित व्यक्तिगत छवि से नहीं आता, कभी वह गहरी विशेषज्ञता, स्पष्ट निर्णय और योगदानों को सही दिशा देने की क्षमता से आता है। साथ ही पुस्तक टोरवाल्ड्स की सीमाओं को पूरी तरह छिपाती नहीं। उनका गुस्सा, टकरावपूर्ण जवाब और सामाजिक असुविधा पाठक को यह याद दिलाते हैं कि असाधारण तकनीकी योगदान व्यक्तिगत गुणों का प्रमाण पत्र नहीं है। डेविड डायमंड के वर्णन के कारण पुस्तक के स्वर पर मतभेद रहे हैं, पर यह द्विस्तरीय रचना एक लाभ भी देती है। पाठक टोरवाल्ड्स की अपनी आवाज और उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के बीच अंतर को देख सकता है। परिणाम स्वरूप नेतृत्व को व्यक्ति पूजा नहीं, क्षमता, उत्तरदायित्व और मानवीय अपूर्णता के मिश्रण के रूप में समझने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट युग के तकनीकी इतिहास या मुक्त स्रोत विकास की उत्पत्ति को उसके मानवीय संदर्भ में समझना चाहते हैं। प्रोग्रामर और इंजीनियर इसमें साझा कोड, समीक्षा, योगदान स्वीकार करने और तकनीकी निर्णयों की जवाबदेही पर उपयोगी दृष्टि पाएंगे। प्रबंधक और उत्पाद बनाने वाले लोग भी इससे यह समझ सकते हैं कि व्यापक सहयोग तभी फलता है जब गुणवत्ता के मानक और निर्णय का केंद्र स्पष्ट हो। सामान्य पाठक के लिए इसका आकर्षण एक ऐसे व्यक्ति का अपेक्षाकृत सीधा चित्र है जिसने निजी रुचि से शुरू हुए काम को विशाल समुदाय की परियोजना बनते देखा। हालांकि बहुत गहरे कर्नेल तकनीकी विवरण या मुक्त स्रोत राजनीति का व्यापक इतिहास चाहने वालों के लिए यह अकेली पर्याप्त पुस्तक नहीं है। इसका उद्देश्य तकनीकी पाठ्यपुस्तक बनना नहीं, बल्कि टोरवाल्ड्स की आवाज के माध्यम से उस निर्णायक दौर को पकड़ना है। इसी कारण यह अन्य तकनीकी जीवनियों से अलग है। यहां सफलता को दूरदर्शी योजना, करिश्माई नेतृत्व या शुद्ध वैचारिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसके बदले पुस्तक प्रयोग, उपयोगिता, इंटरनेट आधारित सहयोग और कभी कभी असुविधाजनक व्यक्तित्व के मेल को सामने रखती है। डेविड डायमंड के कुछ खंडों पर आलोचना हुई है कि वे टोरवाल्ड्स के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रशंसात्मक हैं, इसलिए पाठक को उनके चित्रण को विवेक से पढ़ना चाहिए। फिर भी टोरवाल्ड्स के आत्मकथात्मक अंश पुस्तक को विशेष विश्वसनीयता और ऊर्जा देते हैं। यह उस समय का जीवंत दस्तावेज है जब एक कर्नेल परियोजना ने सॉफ्टवेयर बनाने और बांटने की स्थापित धारणाओं को बदलना शुरू किया। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लाइनस टोरवाल्ड्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।